ओम शांति। वैसे तो अच्छी तरह से हमने उषा दीदी के क्लासेस जो कि बीके भाई बहनों को कराते हैं बहुत गहन विषयों के ऊपर, और साथ साथ हम सभी जानते हैं कि अपनी संस्था के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप जो कोर्स चल रहा है वो उसके लिए, उस कोर्स को बनाने के लिए, चलाने के लिए, और बाबा ने डायरेक्ट उषा दीदी जी को ये टचिंग कराई और वहां से ये शुरुआत हुई, और पूरे विश्व भर में उषा दीदी को बाबा ने प्रत्यक्ष कराया सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स के द्वारा। तो आज पूरे विश्व के अंदर सभी का दिल इन्होंने जीत लिया हुआ है, और बाबा साथ साथ आप जानते भी हैं कि रामायण, महाभारत और गीता के जो भी अध्याय है उनका गहन अभ्यास करते हुए उनके रहस्यों को बहुत ही बखूबी से उन्होंने बाबा की ज्ञान के साथ जोड़ करके हम सभी के सामने रहस्यों को प्रत्यक्ष किया हुआ है, जिसके कारण बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि शास्त्रों की अथॉरिटी और बाबा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कौन सच्चा, तो बाबा सच्चा है। तो कैसे बाबा हम बच्चों के आगे सत्य राज, सत्य रहस्य रखता है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश उषा दीदी जी ने डाला हुआ है। हम सभी समय प्रति समय उनके क्लासेस सुनते हैं और बहुत ही लाभान्वित होते हैं। तो आज भी हम उषा दीदी से लाभान्वित होंगे और साथ साथ क्लास के पश्चात वो हमको गहन अभ्यास कराते हुए अनुभूति भी कराएंगे, तो उसका भी हम बहुत अच्छी तरह से सभी मिलकर के लाभ लेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान का खजाना दिया है, और उसके बावजूद भी प्रतिदिन बाबा हर रोज हम बच्चों को मुरली के माध्यम से अलग अलग ज्ञान के श्रृंगारों से श्रृंगारते रहते हैं, और ऐसे श्रृंगार कर देते कि हर बच्चा मास्टर ज्ञान सागर बन जाता है। बाबा के सथा ज्ञान के सागर में हर रोज जो बाबा की बातें हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई इतनी सुंदर बातें होती हैं जिसको अगर सारा दिन मनन चिंतन करते रहो तो अंदर में जैसे खुशी का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। इसी तरह बाबा के मुरलियों में प्रतिदिन लगभग हम ये महावाक्य जरूर सुनते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। साथ ही साथ कभी बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तो दोनों बातें जब सुनते हैं तो दोनों एक ही हैं या अलग है? क्या कहेंगे? अलग है, एक ही है, दो मत हो गए ना। ये स्पष्ट करता है कि अभी तक हमारे अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एक है या अलग है। वास्तव में दो शब्द है तो उसके पीछे दो भाव है, और इसीलिए जब भी इसका प्रयोग हुआ है मुरली के अंदर, अगर ध्यान से मुरली सुनते हैं हम तो समझ में आता है कि कब बाबा ने देही अभिमानी बनने का प्रयोग किया और कब बाबा ने आत्म अभिमानी होने के लिए हमें कहा है। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है, क्योंकि जब हम देह में हैं और हमें कर्म करना है, तो उस वक्त देह के भान से हम परे नहीं हैं। देह के भान में है, वे रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर आप आत्म अभिमानी होकर चलने का प्रयास करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? तो उस समय देही अभिमानी होकर के चलना होता है। जब कर्म करना है तो देही अभिमानी होकर के कर्म करना है, यानी देह की स्मृति है और मैं आत्मा मालिक, ये देह की कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रही हूं। तो जब मालिक बन करके इस कर्मेंद्रिय का प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। परंतु जब हम योग में बैठते हैं उस समय ये देह की इंद्रियों का भी कोई उपयोग नहीं है, तो उस समय देह की इंद्रियों को हम समेट लेते हैं, और जब समेट करके बैठ जाते हैं योग में तो देह से भी न्यारा, यानी देह भान से, उस स्मृति से भी न्यारा आत्मस्थिति में स्थित हो जाते हैं, और आत्मस्थिति में स्थित होते हैं उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। तो देह के प्रयोग जब मालिक बन करके कर रहे हैं वो देही अभिमानी है, जब देह से भी न्यारे हो करके हम आत्म स्मृति में स्थित हो जाते हैं उस समय कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। उस समय की फीलिंग क्या है जब आत्म अभिमानी स्थिति में बैठते हैं, तो उस समय क्या फीलिंग है और देही अभिमानी स्थिति के समय क्या फीलिंग है, उसको स्पष्ट करने के लिए जब किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि ये देह अभिमान में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति देह अभिमान में है? एटीट्यूड और बोलचाल और रहन सहन क्या होता है उसके अंदर? देह अभिमानी व्यक्ति के बोल चाल, रहन सहन, एटीट्यूड में क्या होता है? कर्म में नशा रहता है। किस बात का नशा? ईगो होता है, और मैंपन का नशा होता है, और भी और क्या होता है? रोब का, अभिमान का, और मोह का, और दूसरों के दुख देने के बोल ज्यादा है। हाँ, पढ़े लिखे की बात नहीं है इसमें, लेकिन एक देह अभिमानी व्यक्ति जो है तो आप देखेंगे कि कोई न कोई विकारों का अंश के वाइब्रेशंस उसके अंदर से रेडिएट होते हैं, उससे प्रवाहित होते हैं, उसके बोल चाल में प्रवाहित होते हैं, उसके व्यवहार में प्रवाहित होते हैं, उसकी दृष्टि से प्रवाहित होते हैं। उसने बोले अब बोला भी नहीं हो, कुछ भी बोला भी नहीं है, लेकिन उसका देखने का जो नजरिया है उससे आपको लगता बड़ा देह अभिमानी व्यक्ति है ना, घमंड में। तो देह अभिमान से वश जब कोई व्यक्ति है तो कोई ना कोई विकार, कल की मुरली में बाबा ने कहा कि अधिकतर विकार काम और क्रोध के लिए उपयोग किया जाता है, मोह के लिए नहीं, लेकिन ये पांचों ही विकार है, और ये पांचों की जो विस्तार है उसका परिवार जो है बहुत बड़ा है, पांचों विकारों का परिवार, उसके बाल बच्चे सब बहुत बहुत बड़ा विस्तार है। तो जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म विकारों का अंश जो होता है उससे प्रभावित या उससे वश वो करके जब उनके अंदर से वो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जैसे कहा क्रोध नहीं हो रोग है, जोर से बोलने का स्वभाव है, तो जहां ये वाइब्रेशन भी आता है उस व्यक्ति से, उसके चालने के चाल में अगर वो वाइब्रेशन आता है तो वो है देह अभिमानी व्यक्ति। तो देही अभिमानी व्यक्ति का मतलब, देही अभिमानी से क्या निकलेगा, कौन से वाइब्रेशंस निकलेंगे? फरिश्ता तो बाद में बनने की बात है, यहां क्या निकलेगा? शांत होगा और लाइट रहेगा और भी खुशी रहेगी। और तो जो कोई न कोई सद्गुण के वाइब्रेशंस निकलते हैं, निर्माणता, मधुरता, सत्यता, इसके जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, ये है देही अभिमानी स्थिति। और ये देही अभिमानी स्थिति कब बनती है? तो जब हम योग में आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्म अभिमानी होकर के बैठते हैं, तो आत्म अभिमानी का मतलब क्या? तो आत्मा के जो सात गुण है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये सात गुण, क्योंकि ये सात गुण बेज में है जिससे सारे 36 गुण निकलते हैं। तो जब वो 36 गुण जो है उसके स्वरूप में हम कर्म करते हैं, उसको देही अभिमानी कहा, लेकिन उसका बेज तो सात गुण है। तो जब आत्म अभिमानी होकर के बैठते हैं तो आत्म अभिमानी का मतलब है कि आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप हो जाना और उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर देना। जो आत्मा के सात गुणों का स्वधर्म है, उस स्वधर्म में जब हम स्थित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। माना कॉन्शियसनेस क्या है? ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना कोई आत्माभिमानी स्थिति है? नहीं, ये रटना आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह देह अभिमानी व्यक्ति रटता नहीं है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, देह हूं, अपने आप उस स्वरूप में आ जाता है और वही वाइब्रेशंस उससे रेडिएट होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इसी तरह मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, तो जब आत्म अभिमानी होकर के बैठती हूं, देह से न्यारी हो गई, तो आत्म स्वरूप में यानी आत्मा का सातों गुणों का संपूर्ण स्वरूप। कई बार मुझे याद आता है कि जब आदरणीय गुलजार दादी जी संदेश लेकर के आते थे ना, और उस समय जब संदेश सुनाते थे तो बाबा जब वतन में देखते थे तो उनके मैसेजेस में ये बात आती थी कि जैसे बड़ा हॉल था, हर एक कमल आसन, इतने सारे कमल आसन थे और हर एक जो भी सभा थी बाबा के सामने, एक एक आसन के ऊपर, एक एक कमल आसन के ऊपर सब बैठ गए और फिर वो कमल से जैसे सात रंग की लाइट्स निकलती है, या हर एक ब्राह्मण से वो सात रंगों का ओरा निकलता है या लाइट्स निकलती है। तो ये कब निकलती है कि जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में है, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर दिया है, तब ये सातों रंगों की लाइट्स यानी ये ओरा एक प्रभा मंडल, सात रंगों का, ये सात गुणों की लाइट्स का प्रतीक है कि सात रंगों का आभा मंडल तैयार हो जाता है और वो हमारे आसपास जो कईयों को साक्षात्कार होता है उसमें भी उनको नजर आता है। इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। और जो इस तरह आत्म अभिमानी होकर के सातों गुणों को विकसित करता है, तो जब वो देह के प्रयोग में आते हैं और कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं, तभी भी वो गुणों का प्रवाह उस कर्म में फैलने लगता है कि उसके साथ मिलकर के कोई काम करने वाला भी यही सुकून महसूस करता है कि ये व्यक्ति से जब काम के साथ में जब काम करो तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, हल्केपन की फीलिंग आती है, टेंशन में नहीं आते हैं। ये है देही अभिमानी स्थिति। लेकिन उसके लिए अभ्यास क्या चाहिए? तो एक बात हर रोज बाबा की मुरली के अंदर हम सुनते हैं कि बच्चे मन मना भाव का मंत्र जो बाबा ने हमें दिया है, ये मंत्र बहुत जरूरी है ना योग के लिए। दूसरी ओर बाबा मुरली के अंदर ये भी कहते हैं कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्म समझ, बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो, है ना? अब पहले दिन जब हम बाबा के घर में आते हैं और कोर्स करते हैं तो हमें ये स्पष्ट समझाया जाता है कि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मेरा प्रश्न ये है कि मन मना भाव होने से बुद्धि का योग लगेगा या बुद्धि का योग लगाने से मन मना भाव होंगे? क्योंकि दोनों एक तो नहीं है। अब पहले मन मना भाव होना है या देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्म समझ, बुद्धि का योग बाप के साथ जोड़ना है, क्या करना है? मेरा सवाल समझा कि मन मना भाव होने से बुद्धि का योग लगेगा या बुद्धि योग लगाने से मन मना भाव होंगे? हाँ, दो मत हो गई ना फिर से। अब योग का बेस ही अगर कच्चा है तो योग कहां से लगेगा? यही पता नहीं कि पहले मन लगेगा या बुद्धि लगेगी, कौन किसको फॉलो करेगा? क्या कहेंगे, मन बुद्धि को फॉलो करेगी या बुद्धि मन को फॉलो करेगा? अच्छा, जो कहते हैं पहले मन लगाना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कहते हैं पहले बुद्धि लगेगी वो हाथ खड़ा करो। 50-50 हो गए, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे स्कूल में वो इंस्पेक्टर आता है ना साल में एक बार, तो पता चलता है कि पढ़ाई कैसी हुई है। हा? तो ये तो हेडक्वार्टर में आए तो माना क्या हो गया, एग्जाम हो गई आपकी। तो नहीं, दोनों लगेगा लेकिन पहले किसको लगाना? अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, है ना, इस सवाल को बाजू पर रखते हैं। ऐसा है, दूसरा सवाल पूछती हूँ, अब आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया है, है ना? खुशी है हमें भी कि अभी अंदर में मंथन चालू तो हुआ कम से कम, के मन लगेगा पहले बुद्धि लगेगी। अच्छा मन क्या काम करता है? सोचने का काम करता है, संकल्प करता है। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। निर्णय भी कब करती है? बुद्धि के कई काम हैं। बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों में से मन बुद्धि संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण है तो बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? खाली निर्णय तो लास्ट में निर्णय लेती है। अब आत्मा समझकर बैठना, उसमें क्या निर्णय लेना है? उसमें तो कोई निर्णय लेने की बात नहीं है। अच्छा समझती है तो क्या आत्मा, बाबा ने जब कह दिया आत्मा समझना, तो आत्मा को तो समझ लिया, फिर बुद्धि का रोल क्या है? तो बुद्धि का रोल है कि बुद्धि का रोल है देखना, विजुअलाइजेशन। जो चीजें ये चरम चक्षु नहीं देख सकती है, वो चीजें बुद्धि के नेत्र के द्वारा देखनी है। अंतर चक्षु जिसको कहा, ये अंतर चक्षु जो है ये बुद्धि के पास है। जो समझने का काम करता है, जैसे मान लो कि आज मेरे सामने कोई मशीन रख दे, मुझे मशीन चलाना नहीं आता है, मैं सोचती रहूंगी, संकल्प चलाते, ऐसा करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ऐसा करना होगा, सोचती रहूंगी। लेकिन अगर किसी ने आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि पहले ये बटन चालू करने का, उसके बाद ऐसा करने का, उसके बाद ये करने का, और फिर ये काम पूरा हो जाए तब ऐसे बंद करने का, सारा देखने के बाद मैं क्या कहूंगी? अब समझा। तो समझा कब? जब देखा। बिना देखे समझ में नहीं आता है, तब तक मैं सोचती रहती हूं, ऐसा करना होगा, ये करना, सोच चलता रहता है। योग में भी हमारा सोच चलता रहता है, लेकिन बुद्धि के चक्षु द्वारा जब तक देखेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो बुद्धि का योग लगेगा। अब होता क्या है कि मान लो कि आपके घर में दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चों को, एक छोटा है एक बड़ा है, आप बड़े को फ्री छोड़ दो और छोटे को कहो पढ़ाई करो। अब बड़ा फ्री हो गया, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं, क्या करेगा वो? हाँ, दरवाजे के पीछे खड़ा हो करके ये छोटा जो पढ़ रहा है उसको बॉल बैट दिखाता है। अब ये छोटे का मन पढ़ने में लगेगा? नहीं लगता है। वो बॉल बैट दिखाता है। अब जैसे ही आप पढ़ा रहे हैं, उसको बिठाया है, उसका मन तो लग नहीं रहा है, और उतने में आपके मोबाइल में किसी का फोन आ गया, आप फोन पर बात करने लगे, तो ये छोटा क्या करेगा? भाग जाएगा, चला जाएगा। फिर आपका ध्यान गया, अरे कहाँ चला गया ये, बुलाते हैं, इधर आओ, फिर बैठो, तुम यहाँ बैठो, मेरे बाजू में बैठो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ तू फर्स्ट आए तो तुमको पढ़ना ही है। बहुत प्यार है छोटे के साथ में आपका, उसको बिठाया, बड़ा फ्री हो गया। अब बड़ा फिर फ्री हो गया तो क्या करेगा? फिर खिड़की के पास जाकर दूसरा कोई खिलौना दिखाता। अब उस समय वो छोटा आपके प्यार को महसूस कर पाएगा? आपको बहुत प्यार है, लेकिन महसूस करेगा? नहीं करेगा। उसको लगता है बंधन, कि मुझे बांध रहे हैं, वो भी बाहर जाना चाहते हैं। हमारे भी ये दो बच्चे हैं, आत्मा के भी ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। अब हम मन को कहते तू लग बाबा में, इसलिए उसको कमेंट्री देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, हाँ लगा दिया। अब बुद्धि को फ्री छोड़ दिया। अब बुद्धि क्या करता है? अब बुद्धि को तो कोई चाहिए खेलने के लिए, तो बुद्धि मन को घर दिखाता है, घर। अब जैसे ही घर सामने आया तो याद आता है घर में गैस बंद किया कि नहीं किया। मैं आत्मा हूं हो रहा था और गैस याद आ गई। फिर गैस गैस चालू रह गई होंगी तो मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ चला थोड़ी देर, फिर याद आया छोड़ो, जो होना होगा होगा, कोई ना कोई देखेगा। फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ शुरू कर दिया, शिव बाबा की संतान हूँ, फिर बुद्धि फ्री है। तो बुद्धि ने और खिलौना दिखा दिया, कोई व्यक्ति का चेहरा दिखा दिया। अब व्यक्ति का चेहरा, अरे उसको ये संदेश देना तो भूल ही गए, अब मेरे को ये बहाना बनाना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, ये बात बना दूंगी, मन चला गया। फिर याद आता है ठीक है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। फिर उसने दिखाया, अरे अलमारी बंद किया कि नहीं किया, अलमारी दिखा दिया, अलमारी में ये पैसा रखा है, ये रखा है, वो पैसा भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई। फिर सोचते छोड़ो, और उतने में सफेद लाइट हो गई। योग तो लगता ही नहीं है, ज्ञान सुनने में बिठाओ बड़ा मजा आता है, योग लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है योग? मैंने महसूस हुआ कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैंने कमेंट्री दिया फिर भी योग नहीं लगा। तो माना खाली कमेंट्री देना योग नहीं है, खाली संकल्प चलाना योग नहीं है, ये मन मना भाव होना नहीं है। तो मन मना भाव कैसे होंगे अगर ये योग नहीं है? तो योग किसको कहा फिर? उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ये योग है क्या? आपका दिल इस बात को स्वीकार करता है कि ये योग है? जब आपका दिल स्वीकार नहीं करता है तो फिर क्यों ये आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ कर रहे हैं? ये योग नहीं है। और फिर कहते योग कमेंट्री के बिना तो मेरा योग नहीं लगता है, और योग कमेंट्री योग है ही नहीं, तो योग क्या है फिर? योग किसको कहा फिर? क्या कहेंगे? कहने का भावार्थ के जैसे घर के अंदर आप ये बात समझते हैं अच्छी तरह से कि अगर मुझे छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाना पड़ेगा, इतना तो कॉमन सेंस हर एक के अंदर होती ही है, स्वाभाविक है कि मुझे अगर छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाना पड़ेगा, दोनों को साथ मिलकर के पढ़ाना होगा तब जाकर के पढ़ेंगे। इसी तरह मुझे योग लगाना है तो मन और बुद्धि दोनों को बिठाना होगा। खाली एक चलाने से योग नहीं है, खाली विजुअलाइजेशन करना भी योग नहीं है, वो तो बहुत कुछ, जैसे दुनिया में भी कहा गया शेख चल्ली के विचार बहुत कुछ देखते रहते हैं, कहते हैं ना, उसको भी योग नहीं कहा जाता है। हाँ मैं शिव बाबा के पास में गई, मैं शिव बाबा के पास में बैठ गई, शिव बाबा के हाँ मुझे बहुत लाइट मिल रही है, कोई लोग कहेंगे ये कल्पना कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में है नहीं। और इसीलिए खाली कल्पना करना ये भी योग नहीं है, तो खाली संकल्प चलाना ये भी योग नहीं है, दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा दोनों को। लेकिन कौन किसको फॉलो करता है? तो पहले क्या होना चाहिए? तो पहले विजुअलाइजेशन, और उस विजुअलाइजेशन के हिसाब से संकल्प अपने आप चलना चाहिए। यह है यथार्थ योग। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं कि मान लो कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब घर में है तो घर में अपने आप को थोड़ी डॉक्टर समझता है, घर में तो घर का सदस्य समझता है, तो घर के कारोबार में भी हाथ बटाएगा। अगर गार्डनिंग का शौक है उसको तो गार्डनिंग भी करेगा, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी समझा है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन जिस दिन सोमवार होता है, मंडे मॉर्निंग हॉस्पिटल जाना है, तो उसको रटना नहीं पड़ता है कि तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर, या वो भी रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन जैसे ही तैयार होने लगता है, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी हो रही है, तो माना डॉक्टर समझ लिया, विजुअलाइज कर दिया उसने। और जैसे ही डॉक्टर समझेगा अपने आप को कि कौन याद आएगा, पेशेंट याद आएंगे, आज ये पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना है, ये पेशेंट का ऑपरेशन करना है, ये पेशेंट को डिस्चार्ज देना है, ये पेशेंट का सारा रिपोर्ट देखना है, उसका ब्लड चेक करना करवाना है, ये चेक करवाना, सारी उसी से संबंधित बातें उसके अंदर विचारों में चलने लगेगी। तो डॉक्टर समझा, समझने का मतलब रटा नहीं। और उस समय मान लो कि जाने के समय जैसे ही वो निकल रहा है, और उसी समय उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा शाम को जब तुम घर लौटो तो रास्ते में से ये चीज लानी है। हाँ किया, ठीक है। लेकिन जब शाम को घर आता है और माँ पूछती है, बेटा ये लाया, तो कहेगा भूल गया। अब माँ कहेगी भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कहां से लग गई? भूलने की बीमारी नहीं है, भूलने की बीमारी है तो ऑपरेशन भूल जाना चाहिए, दवाइयां भूल जानी चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं भूल रहा है। लेकिन फिर ये काम क्यों भूल गया? क्योंकि ये बात उस वक्त कही गई थी जब वो बेटे की कॉन्शियसनेस में नहीं था, डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में था। और डॉक्टर समझा था तो घर से दरवाजे बंद हो गए थे उसके, इसलिए घर का ये काम उसको याद नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उसने बेटा समझा ही नहीं था, डॉक्टर समझा था। इसी तरह मान लो कि एक व्यक्ति अच्छा हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में उसकी चाल कैसी हो जाती है? ऑफिशियल, डॉक्टर समझा है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो गुड मॉर्निंग कह के आगे बढ़ता है, खड़ा नहीं हो जाता है फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि उसको अपने टाइम की कीमत है कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर समझा है। तो मेरे पास एक सेकंड फालतू बात करने के लिए नहीं है। अच्छा, जब राउंड पर जाता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब सारी रात नींद नहीं आई, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, यहां दर्द होता रहा, ऐसा हम होता। डॉक्टर साहब जानते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, पहला दिन ऑपरेशन का है, क्या क्या उसको सब पता है। पूछेगा, आपने ये दवाई लिया था रात को? हाँ लिया था डॉक्टर साहब। फिर भी नींद नहीं आई? नहीं, नींद नहीं आई, कोई बात नहीं, चलो आज है ना आपकी दवाई बदली कर देते हैं, है ना, दूसरी दवाई दे देते हैं। रखेगा वही दवाई, साइकोलॉजिकली पेशेंट को लगा दवाई बदली हो गई। हाँ, दवाई बदली हो गई तो दूसरे दिन आकर पूछेगा, आज के नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम था कि पहली रात है तो दर्द हुआ होगा और होगा ही, नींद थोड़ी नहीं आएंगी, लेकिन दूसरी रात में तो ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो दवाइयां काम करना शुरू। तो दूसरी रात आज दवाई लिए तो नींद आई? हाँ आ गई। हाँ, ये दवाई ही अभी चालू रखना, वही दवाई है पहले दिन से, बदली नहीं किया गया है साइकोलॉजिकली, क्योंकि उसको मालूम है कि क्या हुआ है, डॉक्टर समझा है उसने अपने आप को। پیشنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ پیشنٹ ہفتے کے بعد ہی کھڑا ہو پائے گا تو بھی کیا کہ ارے کل سے لے کر تو دیکھنا آپ دوڑنا چالو کریں گے آپ چلنا چالو کریں گے آپ یہ کرنا چالو کریں گے سب ٹھیک دوسرے دن آپ پوچھیں گے بھائی ابھی میں دوڑنا چالو کروں رک جاؤ آج نہیں ابھی اور ایک دو دن جانے دو پھر کہے گا کہ نہیں کہے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھا ہے اچھا او پی ڈی میں بیٹھے گا وہاں کوئی رشتے دار آ گیا رشتے دار ہلو ڈاکٹر صاحب کیسے ہو گھر میں سبھی کیسے ماتا پتا کیسے ہیں بچے کیسے ہیں ایسا ڈاکٹر صاحب کیا کہے گا سب ٹھیک ہے بتاؤ آپ کو کیا پرابلم ہے نہیں اس نے اس وقت رشتے دار تھوڑی سمجھا ہے وہ ڈاکٹر سمجھا ہے تو اس کے پاس یہ فالتو باتیں کرنے کا سمے نہیں ہے کہ گھر پریوار کے بارے میں پوچھنا ہے تو گھر میں آنا دس از ناٹ دا پلیس اس لیے کیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہے بتاؤ آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کیسے یہاں آنا ہوا کہے گا کہ نہیں کہے گا کیونکہ ڈاکٹر سمجھا ہے اس وقت اس نے رشتے دار نہیں سمجھا ہے ٹھیک اسی طرح مان لو کہ ایک ویکتی ٹیچر ہے گھر میں سارا کام کاج کر رہے ہیں تب اس نے ٹیچر نہیں سمجھا ہے لیکن دوسرے دن جیسے ہی اس کو اسکول جانے کا سمے ہوتا ہے تیار ہوتے ہیں ٹیچر سمجھا تو میں ٹیچر ہوں یہ رٹنا نہیں پڑتا ہے لیکن جیسے ہی ٹیچر سمجھا کہ کون یاد آئے گا اس وقت اس کو اپنے بچے یاد نہیں آئیں گے یہ کلاس کو یہ پڑھانا ہے یہ کلاس کو یہ ہوم ورک چیک کرنا یہ کلاس کا یونٹ ٹیسٹ لینا یہی باتیں اس کے دماغ میں چلے کیونکہ ٹیچر سمجھا ہے اسی طرح ایک ویکتی اپنے آپ کو جب پتی سمجھتا ہے تو کون یاد آتا ہے پتنی کی یاد آتی ہے جب پتا سمجھتا ہے تو کون یاد آتا ہے بچوں کی یاد آتی ہے جب خود کو بچہ سمجھتا ہے تو کون یاد آتا ہے ماتا پتا کی یاد آتی ہے خود کو بھائی سمجھتا ہے تو کون یاد آتا ہے بھائی بہن کی یاد آتی ہے تو اپنے کو آتما سمجھیں گے تو کون یاد آئے گا آتما سمجھنے کا مطلب آتما ہوں رٹنا نہیں ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہوں یہ رٹتا نہیں ہے لیکن اس کانشیسنس میں آ جاتا ہے اور اسی لیے وہی ارجا اس کی پرواہت ہونا شروع ہو جاتی ہے وہی وچار دھارا اس کی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ڈاکٹر سمجھا اسی طرح آتم سمجھنا مانا میں آتما ہوں شریر کی مالک ہوں شریر کی کرمیندری کا اسی سے سمبندھت باتیں وچاروں میں چلنی چاہیے تب کہیں گے آتما سمجھا ہے اس لیے بابا کہتے ہیں کہ کئی بچے دیہ ابھیمان میں ہوتے ہیں میں دیہ ہوں دیہ دھاریوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر کہتے میرا یوگ ہی نہیں لگتا کیسے یوگ لگے گا اگر آتما سمجھ کر بیٹھیں گے تو کون یاد آئے گا دیہ دھاری یاد آئیں گے پرماتما کی یاد آئیں گی اتنی سمپل بات ہے تو آتم سمجھنا مانا سویم کو اس سوروپ میں دیکھنا اور جب اس سوروپ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو من منا بھاؤ ہونا سہج کیونکہ وہ وچاروں کا پرواہ شروع ہو جائے گا اسی سے سمبندھت باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی اور جب اسی سے سمبندھت باتیں یاد آنے لگتی ہے تب دھیرے دھیرے من منا بھاؤ ہو سکتے ہیں تو جب تک اپنے کو آتما نہیں سمجھا بدھی کا یوگ نہیں لگا تب تک من منا بھاؤ ہونا سمبھو نہیں تو دونوں ہی لگیں گے لیکن پہلے آتما سمجھنا ضروری ہے اور آتما سمجھنا مانا آتماؤں ریپیٹ کرنا نہیں لیکن اس سوروپ میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں آتما مالک بن کر کے یہ کرمیندری کا پریوگ کر رہی ہوں یہ مکھ کا پریوگ کر رہی ہوں جب آتما سمجھیں گے تو اسی سے سمبندھت باتیں نکلے گی آتما سمجھنے والے ویکتی کے مکھ سے کبھی ایوگیہ شبد نہیں نکلے گی अयोग्य शब्द निकले और फिर वो कहे नहीं मैं आत्मस्थिति में था इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं संभव ही नहीं है। जैसे साकार बाबा के समय की बात किसी ने सुनाई कि बाबा जब दिल्ली में गए थे तो बाबा ने रजौरी में जब क्लास कराना था तो उस समय रजौरी में बाबा को मिलने के लिए सारे दिल्ली से बच्चे आते थे। तो दो माताएं, बाबा 10 दिन रहे थे तो दो माताएं बहुत दूर से आती थी बस में और आकर के पहला नंबर बैठती थी। तो जो रोज आता हो फिर एक दिन ना आए तो बाबा का भी ध्यान तो जाएगा कि बच्ची आए ही नहीं है आज, क्या हो गया। तो क्लास जब पूरा हुआ, क्लास पूरा होकर के बाबा बाहर आंगन में आए तो दोनों माताएं आई। तो बाबा ने पूछा क्यों बच्ची आज क्लास में नहीं आए, अभी तो क्लास पूरा हो गया। तो माताओं ने दोनों ने कहा कि बाबा बस में बैठे थे और निकले यहाँ आने के लिए, लेकिन आपको याद कर रहे थे ना तो बस स्टॉप कब चला गया पता ही नहीं चला, इसलिए चले गए आगे, फिर वहां से रिटर्न बस लेकर के अभी पहुंचे हैं। तो बाबा ने पता है क्या कहा, मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में होती थी ना तो बस स्टॉप जाता ही नहीं था, बाबा की याद में होती थी तो बाबा की टचिंग होती थी बस स्टॉप आ गया, उतर जाते थे। उस समय किसी और विचारों में होंगे इसलिए बस स्टॉप कब चला गया ये पता ही नहीं चला, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ या देही अभिमानी स्थिति में हूँ तो मेरी कर्मेंद्रिय के द्वारा कोई गलती, अयोग्य कर्म, अयोग्य शब्द, अयोग्य विचार आ नहीं सकता है। अगर आ रहा है माना मैं देह अभिमान में हूँ, ये प्रत्यक्ष है, उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है जो हमें बाद में सॉरी करना पड़े कि माफ करना मेरे से ये गलती हो गई। ये गलती क्यों हुई, क्योंकि देह अभिमान में काम कर रहे थे, उस समय बाबा की याद नहीं थी इसीलिए गलती हुई। अगर बाबा की याद हो तो उस कर्म में कोई त्रुटि हो, भगवान की याद के बाद अगर कर्म में त्रुटि हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस वक्त बाबा की याद अगर है तो कोई भी कर्मेंद्रिया चलायमान नहीं हो सकती है, कोई भी कर्मेंद्रिया हमें विचलित नहीं कर सकती है, कोई भी कर्मेंद्रिया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। जो कई लोग कहते क्या करें मैं डिस्टर्ब हो गई थी उस समय, अपने विचारों से डिस्टर्ब हो गई, तो उसका मतलब आत्मस्थिति में नहीं थे इसीलिए डिस्टर्ब हुए, देही अभिमानी अवस्था में नहीं थे। अब जब देही अभिमानी स्थिति ही नहीं होगी, आत्माभिमानी स्थिति नहीं होगी, तो आगे की स्टेज फरिश्ता स्टेज, अव्यक्त स्टेज, बीज रूप अवस्था, कर्मातीत स्टेज, ये कहां से होगी बताओ, होगी वो तो कितना दूर हो गया, फिर वो मंजिल तो कितनी दूर हो गई। कई बार कई लोग आकर के एकदम हड़बड़ी में आकर के बैठते योग में और फिर योग के बाद कहते आज मेरे को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, उस समय एक साइलेंस की स्थिति थी। ये बात अलग है कि साइलेंस की स्थिति थी, लेकिन उस समय मैंने फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया, असंभव। या मैंने बीज रूप स्थिति का अनुभव किया, असंभव। मुझे याद आता है कि एक बार जब मैं शुरू में यहाँ मधुबन में आई थी तो बड़ी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी थी, तो रोज सुबह में दीदी से गुड मॉर्निंग करने जाते थे हम। तो जब मनमोहिनी दीदी से गुड मॉर्निंग करने एक दिन गए तो रोज माना जैसे ही दीदी के सामने जाते थे दीदी सारा चार्ट ले लेती थी, बातों बातों में चार्ट ले लेती थी। उनके तरीके बहुत माना किसी को समझ में नहीं आए, इस तरह से चार्ट ले लेती थी। तो दीदी पूछती थी अच्छा उषा आज अमृत वेला किया था? कहाँ किया? तो मेरे को एक दिन पूछा, अच्छा आज किस स्थिति में बैठी थी? तो मैंने कहा, दीदी आज साइलेंस में बैठी थी, बड़ा साइलेंस का अनुभव किया। तो दीदी हंसने लग गई और दीदी ने कहा, मोहिनी बहन सामने थे, तो मोहिनी बहन भी हंस रही थी, दीदी भी हंस रही थी, तो मैं एकदम आवाक होकर के देखने लगी कि मैंने कुछ गलत कहा भाई, अमृत वेला तो साइलेंस का अनुभव ही होता है। तो दीदी ने कहा, अमृत वेला कोई साइलेंस का अनुभव करना होता है, इसका मतलब तुम सो गई थी, तुमको नींद आ गई होगी, झुटका आ गया होगा। तो मैंने कहा कि मैं देखती रही ऐसे ही। तो दीदी ने कहा, अच्छा मोहिनी तुमने अमृत वेला किया, आज किस स्थिति में बैठी थी? तो मोहिनी बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि किस स्थिति में बैठी थी। तो दीदी ने कहा, अरे अमृत वेले जब बैठना होता है तो कोई साइलेंस में थोड़ी बैठते हैं, अमृत वेले एक साजन से मिलन मनाना होता है। वो तो साजन से जब मिलन मनाना होता है तो कोई साइलेंस में बैठता है? कैसे बैठता है? कितनी खुशी होती है अपने साजन से मिलने की, नींद आएगी उसको, झुटका आएगा, किससे मिल रहे हैं? और उस खुशी से अगर मिलना ही नहीं हुआ तो वो संबंध कहाँ है? इतना अच्छी तरह मुझे समझाया कि बाबा के साथ योग लगाने का मतलब क्या होता है। और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी ये फीलिंग नहीं आई दोबारा कि भाई मेरा योग नहीं लगता है। योग सहज जैसे लग जाता है, अमृत वेले झुटके आ रहे हैं, नींद आ रही है, ये शिकायत बंद हो गई। तब तक ये शिकायत थी शायद, लेकिन जब ये समझाया कि जब बाबा के साथ मिलन मनाते हैं उस समय कोई साइलेंस का अनुभव नहीं होता है, लेकिन उस समय इतने सुंदर विचारों का निर्माण करो, कोई ना कोई संबंध के आधार पर बाबा को याद करो, उस रूहान में अपने आप को ले चलो, उस अनुभूति में अपने आप को ले चलो कि जिस अनुभूति में आप समा जाओ, हो जाओ, ये है योग। इसका नाम है योग। योग के अंदर ये स्वाभाविक रीति से आ जाना चाहिए, ये नहीं कि क्या करे, बैठते तो है थोड़ी देर तक तो मन इधर उधर भटकता है, खींच के लाते फिर भाग जाता, फिर खींचता है फिर भाग जाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब मेहनत करते हैं ना योग में, तो बाबा को भी मेहनत वाले योगी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे मेहनत करें, ये युद्ध करें, संघर्ष करें योग के लिए, लेकिन बाबा को मोहब्बत वाले योगी पसंद है कि इतना प्यार से बाबा के साथ मिलन मनाने का अनुभव करो, ये भगवान हमसे चाहते हैं। इतना सुंदर हमारा योग लगे कि ये महसूस ही ना आए कि कब सफेद लाइट हो गई, महसूस ही ना आए, ऐसा लगे जैसे इतना जल्दी टाइम पूरा हो गया। तो मधुबन की तपोभूमि में आए हैं, यहाँ संघर्ष नहीं करना, नहीं तो यहाँ आने के बाद भी, यहाँ तो हरेक का अनुभव यही होता है, नेचुरल योग लग जाता है, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ योग लग जाता है ना? यहाँ पर अगर ये अनुभव नहीं हुआ, यहाँ भी अगर घर की बातें याद आती रही, वो दृश्य सामने आते रहे, वो व्यक्तियों के चेहरे सामने आते रहे, वो विचार से घिरे रहे, तो यहाँ आकर के भट्टी करने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए यहाँ बाबा के बेहद के घर में आप आए हैं, एक ऐसी नेचुरल तपस्या हो, नेचुरल तपस्या हो, और उस नेचुरल तपस्या के अंदर समा जाओ, खो जाओ, है ना? मेहनत न करना पड़े, सहज। तपस्या शब्द जब सुनते हैं, तपस्या किसको कहते हैं? मेहनत करनी पड़ती है तपस्या में? नहीं, मेहनत नहीं होती है तपस्या में। तपस्या किसको कहते हैं? आप कोई भी तपस्वी का चित्र सामने ले आओ, हाँ, मान लो कि ध्रुव का चित्र आप सामने ले आओ कि ध्रुव ने तपस्या की थी। एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं, एकांत में चले जाते हैं, और हाँ, और क्या होता है तपस्या में? डिटैच हो जाते हैं। और भी कुछ होता है? आनंद का अनुभव होता है, लक्ष्य होता है, और निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हाँ, तपस्या जब भी कोई करता है, जो ऋषि मुनियों ने भी तपस्या किया, या ये ध्रुव ने जब ये संकल्प किया मुझे तपस्या करनी है, तो तपस्या में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तपस्या करने के लिए एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य स्पष्ट। ऐसे ही आप सभी यहाँ पर आए हैं तपस्या करने के लिए, तो सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट हो कि मेरी इस तपस्या का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को फाइनल करना है। दूसरी बात, उसके लिए एकांत चाहिए, इसीलिए लोग जंगलों में चले गए, ऋषि मुनि लोग जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन बाबा ने हमें एकांत का मतलब बताया है कि हमें कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना अपने घरों में है, लेकिन एक के अंत में समा जाना, यानी वो विजुअलाइजेशन इतना परफेक्ट हो हमारे सामने, और वो परफेक्ट विजुअलाइजेशन के साथ लक्ष्य को याद रखते हुए, स्मृति में रखते हुए उस एकांत में हम जाएं, एक नामी बने, एक की लगन में मगन। जब ये तपस्या हमारी आरंभ होगी, माना एकांत मिल जाएगा, तो एकांत के साथ साथ अंतर्मुखी मौन हो जाते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने जब तपस्या किया तो उन्होंने गुफा चुना, गुफा में बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन बाबा ने हमें गुफा दिया अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। अंतर्मुखी क्यों बनने के लिए कहा? अंतर्मुखता, खाली मुख का मौन नहीं, संकल्पों का भी मौन हो जाए, तब अंतर्मुखता की गुफा में, यानी मुख के ऊपर मुख्य इंद्रियां हैं, सुनने की, देखने की, बोलने की, सोचने की, मुख्य इंद्रियां फेस पर होती है। अंतर्मुख यानी सारी इंद्रियों को अंदर की ओर ले चलो, बाह्यता में वो इंद्रियां न हो, बाह्य बातें करना, बाह्य बातें सुनना, बाह्य बातें देखना और बाह्य बातें सोचना, उससे अपने आप को भीतर ले जाओ। ये है अंतर्मुखता की गुफा। जब इस गुफा में अपने आप को ले चलेंगे, तब सही स्वरूप से हमारी तपस्या आरंभ होगी। अगर अपने आप को अंतर्मुखी नहीं बनाया और तपस्या करने का प्रयत्न करो, तपस्या नहीं होगी। इसलिए तपस्या के लिए सबसे पहले ये अंतर्मुखता की गुफा बहुत जरूरी है। जब भी बाबा अंतर्मुखता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसमें तीन बातें होती हैं बाबा की। पहली बात, गुफा कहा उसको, कि गुफा में जैसे बैठ जाते हैं, तो बाहर की बातों से, बाहर की दुनिया से जैसे डिटैच हो गए, इसलिए अंतर्मुखता की गुफा कहते हैं। दूसरा, जब कहते हैं अंतर्मुखता, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि अंतर्मुखी बनना माना सागर के तले में चले जाना, सागर के तले में चले जाओ। जैसे एक गोताखोर जो होता है, जब सागर के अंदर चला जाता है तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ और भीतर चला जाता है, और जब भीतर जाता है समुद्र के भीतर में तो एक अलग दुनिया में प्रवेश करता है और उस दुनिया को एक्सप्लोर करता है। तो इसी तरह अंतर्मुखी बनना माना सागर के तले में चले जाना। ज्ञान सागर के तले में जब जाते हैं एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं और उसको एक्सप्लोर करो, उस दुनिया को एक्सप्लोर करो, साइलेंस को एक्सप्लोर करो, ज्ञान की बातों को एक्सप्लोर करो, जो भी बातों को एक्सप्लोर करना है उसको कहा अंतर्मुखी बनना, उससे संबंधित बातों में विचार चले। और तीसरा, जब बाबा कहते अंतर्मुखी बनना माना अंडरग्राउंड हो जाना, कि कभी भी कोई रिसर्च करता है दुनिया के अंदर तो रिसर्च करने वाला जब तक अंडरग्राउंड न जाए तब तक रिसर्च नहीं हो सकती है। उसको रिसर्च करना है तो बाहर की दुनिया से जब तक डिटैच नहीं होता है तब तक वो रिसर्च नहीं कर सकता। इसीलिए बेसमेंट में जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, अंडरग्राउंड कंटो निकल जाते हैं रिसर्च करने, उसी माहौल में उसी वातावरण के अंदर उन्हीं बातों के बीच में जब होता है तो उसका दिमाग उस तरह से चलता है कि वो रिसर्च कर सकता है। तो ठीक इसी तरह अंतर्मुखता के ये तीन भाव है। तो तपस्या करने के लिए भी सबसे पहले अंतर्मुखी बनना माना ये गुफा में चले जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ या सागर के तले में चले जाओ, बाहर की दुनिया से कट ऑफ, तब रियल तपस्या का अनुभव होगा। तीसरी बात, जब भी कोई तपस्या करते हैं तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प का अभ्यास करते हैं। इसीलिए बाबा की एक मुरली याद आती जिसमें बाबा ने कहा था कि तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ संकल्पधारी बन जाना। जैसे ध्रुव ने दृढ़ संकल्प कर लिया और एक टांग पर खड़ा हो गया, दृढ़ संकल्प था। हम लोग बाबा के घर में आते हैं, बाबा भी कई बार हम बच्चों को कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, है ना? यहां आते हैं बाबा के कमरे में जाएंगे, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और उसमें भी 18 जनवरी हो या शिवरात्रि हो ऐसा कोई दिन होता है विशेष, तो इतने अच्छे संकल्प आते हैं। और अमृत वेले जब बाबा की याद में बैठते हैं तो अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ हम क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम ये कमजोरी पर विजय प्राप्त करने के लिए ये दृढ़ संकल्प करते हैं। यहां तक जब जितने दिन रहते हैं तो उस दृढ़ संकल्प में तो बहुत अच्छा महसूस होता है, उस दृढ़ संकल्प में रहते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला होने लगता है और ढीला होते 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 थोड़े दिन में ही विस्मृत हो जाता है और वापस उस कमजोरी के वश हो जाते हैं, और कमजोरी के वश होने के बाद वो संकल्प ऐसा गायब हो जाता है कि हमने कभी बाबा के कमरे में ये दृढ़ संकल्प लिया था। दूसरे साल जब 18 जनवरी तब याद आता है कि अरे पिछले साल भी ये दृढ़ संकल्प किया था, हुआ ही नहीं। तो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला क्यों होता है, कारण क्या है? जब दृढ़ संकल्प किया, अमृत वेले किया, बाबा के कमरे में बैठ करके किया, 18 जनवरी के दिन किया, बाबा साहब वरदान भी मिला, फिर भी हमारा दृढ़ संकल्प ढीला हो गया, क्यों? स्मृति में नहीं रहता है, इसलिए क्यों नहीं रहता है स्मृति में? अटेंशन नहीं और हाँ परिस्थितियां चेंज हो जाती है, टेंशन की कमी, अभ्यास नहीं है, उसको महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया महत्व? कारण क्या हुआ? भूल क्यों जाते हैं? कारण है आलस्य और अलबेलापन के डनलप के तक्के लगाना चालू किया। आलस और अलबेलेपन के दनलप के तकिए लगाने हमने शुरू कर दिया। यहां से जाने के बाद ही हाँ भाई बहुत ट्रैवलिंग करके आए हैं, थक गए हैं और दूसरे दिन इसीलिए सुबह अमृत वेला, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, है ना, कल से कर लेंगे। और एक बार वो दनलप का तकिया लगाया अपने आप से कि चलेगा कोई बात नहीं, हर एक से होता है, कौन करता है, ये करता, ये डनलप के तक्के जैसे लगाने चालू किए तो वो दृढ़ संकल्प हमारा धीरे 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 ढीला होकर के विस्मृत हो जाता है। मैं यही कहती हूँ कि भाई ध्रुव ने जब दृढ़ संकल्प लिया मुझे एक टांग पर खड़ा रहना है, फिर उसने उसके बाद ये दृढ़ संकल्प में डनलप के तक्के लगाए कि भाई रात को नहीं खड़ा रहे, दिन में खड़ा रहूंगा। ये ऋषि मुनियों ने जब एक दृढ़ संकल्प लेकर के तपस्या में बैठे तो वो क्या बोलते हैं, राफड़े खड़े हो गए, लेकिन बैठे रहे वो उसी के अंदर, है ना, वो ओम की ध्वनि उनकी चलती रही। मना कहीं पर भी सौलियत नहीं दिया उस संकल्प में, सौलियत को आने नहीं दिया कि ये सौलियत चलेगा। जहां हमने मन से भी ये सोच लिया कि भाई इतना तो चलेगा, इतना कौन करता है, इतनी सहूलियत चलेगी, तब कहा कि ध्रुव ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई रात को मैं नहीं करूंगा, दिन में खाली खड़ा रहूंगा, है ना। अगर इस तरह की सहूलियत लेना शुरू करता था तो शायद वो उस तपस्या में सफल नहीं होता। तो कहीं पर भी जब भी आलस और अलबेलापन आता है तो हम सहूलियत लेना चालू करते हैं, इतना चलेगा, है ना। योग में बैठे हैं लेकिन भाई अभी थोड़ी एज हो गई, पीछे सहारा जरूरी है, थोड़ा तक टेक लगा करके बैठते हैं, उम्र हो गई है, क्या करें, उम्र हो गई। मैं कई बार यही सोचती हूँ अंदर में के जब ब्रह्मा बाबा के समय साकार बाबा की पालना लिए हुए भाई बहनों से अगर पूछेंगे तो कहेंगे उस समय छोटे हॉल में बाबा मिलता था, योग कराता था अमृत वेले भी और क्लास कराता था। बाबा की एज क्या थी? 90 अबव थी ना, तो 90 साल की एज में भी बाबा ने जो गद्दी ऐसी रखी है उस पर ही बाबा, एक साइड बाबा मम्मा बैठते थे, तीन गद्दियां रहती थी और तीन गद्दियों पर बैठते थे बाबा, एक तरफ मम्मा एक तरफ बैठते थे, जिसको टेक भी नहीं होता था। तो क्या बाबा को उम्र नहीं लगी? बाबा की उम्र नहीं हुई क्या? 90 साल की एज में बाबा ने यह सोचा मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे थोड़ा टेक लेना चाहिए। तो हम लोग क्यों लेने लगे? इसीलिए हमारी तपस्या ढीली हो गई, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सहूलियत लेना चालू किया कि इतना तो चलता है, नहीं तो कैसे बैठेंगे इतना घंटा। मुझे याद है, बहन जी तो बता सकते साकार बाबा के समय के हैं कि उस समय सोफा, छोटे हॉल में सोफा होते थे क्या? कभी नहीं होते थे, कोई दादियां नहीं बैठती थी, आराम से नीचे पलटी मार करके। आज हम लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, मैं अपने आप से भी कहती हूँ कभी कभी, खाली आप लोगों, मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि आज हम लोग ये कंप्लेन करते हैं हमारे, मैं कहती हूँ बाबा 90 साल में कभी घुटनों की कंप्लेन नहीं किया, इतना प्रकृति जीत, अपनी कर्मेंद्रिय जीत, और हम लोग नहीं बने अभी तक, ये हमारी कमी है। चाहे कोई भी कारण बताए, क्योंकि हमने अपने शरीर को इतना सहूलियत दे दे करके क्या किया है, ہم نے ایسا اس کو آرام پسند بنا دیا ہے, آرام پسند بنا دیا ہے کہ اسی لیے ہم بیٹھتے ہیں تو بھی ایک بابا کا کوئی بھی چتر آپ دیکھ لو چھوٹے ہال میں, جب بھی بابا بیٹھے ایک دم ٹٹار ایسے, ایک دم پیٹھ سیدھی, ایک دم اور پیٹھ سیدھی رکھ کر کے ایک دم ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے. سنا ہے, میں نے تو دیکھا نہیں یہ پریکٹیکل, لیکن جو بڑوں سے سنا ہے کہ بابا نے کبھی بھی کہ بھائی بیٹھنا ہے تو اتنا الرٹ, اور بابا نے کبھی نہیں کہا. آج کئیوں کو ہم لوگوں کو نیند آ جاتی ہے, جھٹکے آ جاتے ہیں, بابا کو کبھی جھٹکا لیتے دیکھا کسی نے؟ 90 سال کی ایک میں کیا بابا کو عمر نہیں لگی؟ بابا کی عمر نہیں ہوئی تھی کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی اس لیے ہم کو جھٹکے آتے ہیں, نیند آ جاتی ہے؟ بابا کی تو کبھی یہ شکایت نہیں سنی. کیوں؟ مما کو اتنی بیماری ہونے کے بعد بھی, کینسر جیسی بیماری ہونے کے بعد مما نے سہولت نہیں لیا. تو اس کا مطلب جس ڈھال سے ہم اپنے شریر کو ڈھالنے کا پریاس کریں گے ویسے ہی ہم اپنے شریر کو ڈھال پائیں گے. لیکن اگر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا یہی بھاو ہے کہ شاید میں نے اپنے شریر کو اتنا دنلب کے تکے لگا لگا کر کے کیا کیا ہے, خراب کر دیا ہے کہ آج وہ بیٹھنے کے لیے بھی منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں بھائی ٹانگیں نیچے رہیں گی تو میں بیٹھوں گی, کرسی ہوں گی پیٹ کو سہارا ملے گا, پیر نیچے رہیں گے تو ہی میں تپسیا. اب تپسیا ہوگی کیا ہوگا؟ تپسیا ہوگی ہماری نہیں ہوتی ہے. اسی لیے وہ تپسیا جو بابا کے سمے ہوتی تھی وہ تپسیا ہماری نہیں رہی, کیونکہ درڑتا سمپن ابھیاس نہیں ہمارا. اس میں میں خود بھی اپنے آپ کو کئی بار اس بات کا چنتن کرتی ہوں تو میرے سامنے بھی میری اپنی بھی کمزوریاں سامنے آتی ہے کہ شاید میں نے بھی اپنے آپ کو بگاڑا ہے, اپنے شریر کو بگاڑا ہے. اب پرکرتی جیت بننا ہے مجھے تو کیسے بنیں گے ہم؟ کوئی نہ کوئی ودھی نکالنی ہوں گی. اس لیے جب بھی جھٹکا آئے, تپسیا کرتے کرتے جب بھی جھٹکا آئے تو بابا کو یاد کر لینا کہ بابا کو جھٹکا نہیں آیا. اب میں یہ بہانہ نہیں دے سکتی ہوں کہ میری عمر ہو گئی اس لیے مجھے جھٹکے آئے, یہ بہانہ دے سکیں گے ابھی ہم؟ وہ بات اگر سامنے آ جائیں گی تو نیند اڑ جائیں گی, نیند اڑ جائیں گے, اپنے آپ اڑ جائیں گے. وہ چیزوں کو سمرتی میں لاؤ. اسی لیے بابا کہتے ہیں سمرتی سوروپ ہونے کی آوشیکتا ہے ہمیں. جتنا سمرتی سوروپ ہوں گے تب جا کر کے ہم اپنے تپسیا میں سفل ہو سکیں گے, نہیں تو تپسیا میں سفل نہیں ہو سکیں گے. تو اسی لیے درڑتا سمپن ابھیاس. اور چوتھی بات, تپسیا مانا ویراگ. ان لوگوں نے چیز وستوں کا ویراگ کیا اور جنگل میں چلے گئے. بابا ہم کو بے حد کی ویراگ کی ورتی سکھا رہے ہیں کہ بے حد کی ویراگ کی ورتی کو دھارن کرنا ہے, کیونکہ جب تک ہم بے حد کی ویراگ کی ورتی کو دھارن نہیں کریں گے تب تک ہماری ریئل تپسیا ہوگی نہیں, ہے نا. بے حد کی ویراگی ورتی اندر سے آتی ہے, باہر کی باتوں کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو ایسا چھوڑ دو وہ, اس سے نہیں آتی ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھیتر سے ویراگی ہو, بھیتر سے ویراگی ہو. اسی لیے جب ایسے بے حد کی ویراگی ورتی کے سادھن سویدھا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر میں اس ورتی کو وکست کر سکتی ہوں اپنے اندر تب جا کر کے میری ریئل تپسیا آرم ہوگی, اور وہ ریئل تپسیا ہمیں اپنی منزل کو لکش کو پورا کرنے میں مدد کرے گی. تو تپسیا اسی کا نام ہے, اور تب جا کر کے ایکاگرتا پورن ابھیاس ہوگا. ایکاگرتا, آج جو ہماری شکایت ہے کہ ایکاگر نہیں ہو پاتا ہے من, वो एकाग्रता हमारी क्यों नहीं होती है, उसके पीछे भी कारण है। और एकाग्रता न होने का कारण यही है कि कहीं न कहीं हम स्थूलता में अटके हुए हैं। कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए? तो हर इंसान में 5 प्रकार की एकाग्रता बहुत जरूरी है तपस्या के लिए। सबसे पहली एकाग्रता शारीरिक एकाग्रता, हिलते डोलते रहेंगे, हिलते डोलते रहेंगे, खांसते रहेंगे, ये इसका मतलब योग नहीं है। तभी ये इतना देह के तरफ हमारा ध्यान जाता, अपने आप चला गया है कि हिलते डोलते रहेंगे घड़ी घड़ी। तो तपस्या के लिए कहा गया है कि जिस आसन के अंदर आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, स्थिरतापूर्ण, जितना स्थिरता है शारीरिक एकाग्रता है, उतना देह से डिटैच होना आसान होगा। लेकिन शारीरिक, यहां दर्द होता है, ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, ऐसे ऐसे टांगे चलती रहेंगी, हाँ होता रहेगा, तो शारीरिक एकाग्रता को नहीं लाए तो मन भी अंदर दिखा रहा है कि मन अंदर में हिल रहा है, मन की एकाग्रता तो बहुत दूर की बात है। तो शारीरिक एकाग्रता पहली एकाग्रता है, स्थिरता। दूसरी एकाग्रता है मानसिक एकाग्रता। और मानसिक एकाग्रता, तो मन भटकता है, ये जो एक शिकायत है, तो मन क्यों भटकता है और कहां भटकता है? मन 3 चीजों में भटकता है। कभी भी आप देखेंगे तो मन ये 3 बातों में भटकेगा। पहला, इच्छाओं में भटकेगा, कोई ना कोई चीज चाहना रखते हैं, इच्छाएं हैं, इच्छाओं में भटकता है। दूसरा, व्यर्थ में भटकेगा, जब इच्छाएं नहीं है तो व्यर्थ में भटकता है। और तीसरा, संबंधों में भटकता है, कोई ना कोई संबंधों में चला जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सर्व संबंध हमारे एक बाबा के साथ है। ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये जब हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं तो फिर व्यर्थ में भटकने की भी कोई मार्जिन नहीं है। तो 3 बातों से मन को फ्री करना है जिसमें वो भटकता है। फ्री करने की युक्ति हमें अपने आप में सोचनी होगी और फिर मन के अंदर ये लक्ष्य पक्का करें। उसके लिए जैसे लक्ष्मण रेखा, मन को लक्ष्य के अंदर बांधने के लिए उसको कोई डिसिप्लिन की रेखा के अंदर रखना जरूरी है। तो मन को भी कोई न कोई परहेज में, कोई न कोई डिसिप्लिन में बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी मन भटकेगा नहीं। तो दूसरी एकाग्रता मानसिक एकाग्रता है। संकल्पों की शुद्धि जितनी है उतनी मानसिक एकाग्रता को विकसित कर सकेंगे। शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प और समर्थ संकल्प, ये हमारे मन की एकाग्रता को विकसित करने में हमें बहुत मदद रूप होंगे। तीसरी है बौद्धिक एकाग्रता। बौद्धिक एकाग्रता को विकसित करने के लिए क्लीन एंड क्लियर बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि। अगर बुद्धि में मैलापन है तो योग नहीं लगेगा। जिसको दूसरे शब्द में कहे तो कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव बुद्धि हो, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि ना हो। क्योंकि जितनी डिस्ट्रक्टिव बुद्धि होगी उतना योग कभी नहीं लगेगा, और योग में जो अवस्थाओं का अनुभव करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। तो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि और कंस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको मैं कहती हूँ? सिंपल शब्द में अगर मैं कहूँ तो कैंची का काम न करे, सुई धागे का काम करे। जो कैंची का काम करने वाली बुद्धि है उसका योग कभी नहीं लगता है, बुद्धि लगेगी नहीं बाबा में। लेकिन सुई धागे का काम करने वाले जो है उसका योग नेचुरल हो जाएगा, तभी निश्चय बुद्धि बन सकेंगे। अगर बुद्धि में स्वच्छता है तो निश्चय बुद्धि बनना सहज होगा, नहीं तो बीच बीच में संशय के कीड़े खड़े होते रहेंगे और वो कंफ्यूज होता रहेगा, क्या करूं कैसे करूं, अनेक प्रकार के क्यों क्या के अंदर में क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे जो हमारा योग लगने नहीं देगा। चौथी एकाग्रता है भावनात्मक एकाग्रता, क्योंकि हमारा योग जो है भावनाओं से है, भावनाओं को जोड़ना है। बाबा ने जो सर्व संबंध कहे, संबंध क्यों जोड़ने के लिए कहे, क्योंकि तभी हमारे अंदर में से भाव क्रिएट होंगे बाबा के प्रति। तो भाव जितने हमारे शुद्ध और श्रेष्ठ है भगवान के लिए, उस संबंध के लिए जितना रिस्पेक्ट का भाव है बाबा के लिए, उतनी भावनात्मक एकाग्रता के साथ इमोशंस को जोड़ते हुए मन बुद्धि और भावना, ये तीन वास्तव में योग में काम करते हैं। योग को सहज सुंदर अनुभव प्रदान करने वाला अगर चाहिए तो तीनों को एक करना, ये तीनों में जितनी एकता आएगी उतना हमारा योग लगा रहेगा, नेचुरल योगी जीवन बनेगा। और तब हम स्मृतियात्मक एकाग्रता यानी स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, और स्मृति स्वरूप हो करके जितनी देर उसमें बैठना चाहे उस अवस्था में उतनी देर हम सहज बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये है रियल तपस्या।
बहुत बहुत धन्यवाद उषा बेन, इतनी सरलता सहजता से स्पष्ट हुआ। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कहेगा कि मुझे मेरा योग नहीं लगता है या तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, होगा क्या? नहीं होगा। और अभी भी उषा बेन हमारे साथ है, 1 बजे तक है।